लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि कलीसियाई जयंती वर्ष 2025 हमारे विश्वास को मजबूत करे, हमें अपने दैनिक जीवन में पुनर्जीवित मसीह को पहचानने में मदद करे तथा हमें ख्रिस्ती आशा के तीर्थ यात्रियों में परिवर्तित कर दे। आमीन।
नमस्कार श्रोताओ, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है बुधवारीय आम दर्शन समारोह में संत पापा फ्रांसिस की धर्म शिक्षा माला भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा फ्रांसिस ने अपने बुधवारीय आम दर्शन समारोह के अवसर पर संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में एकत्रित सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों को संबोधित करते हुए कहा,
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Dopo aver riflettuto sull'azione santificatrice e carismatica dello Spirito, dedichiamo questa catechesi a un altro aspetto.
Priye bhaiyo evam behno, suprabhat. Pavitr atma ke pavitrikaran aur karishmai karya par chintan karne ke uprant, aaj ki dharm shiksha mein hum ek alag tathya सुसमाचार प्रचार में पवित्र आत्मा के कार्यों अर्थात कलिसम में प्रवचन की भूमिका पर चिंतन करेंगे। संत पेत्रुस का पहला पत्र हमें प्रेरितों को पवित्र आत्मा की शक्ति से सुसमाचार प्रचारकों के रूप में परिभाषित करता है। इस अभिव्यक्ति में हम ख्रिस्तीय सुसमाचार प्रचार की दो बातों को क्रमशः पाते हैं, इसकी विषय वस्तु जो सुसमाचार है और माध्यम जो पवित्र आत्मा है। संत पापा ने सुसमाचार की विषय वस्तु के बारे में चिंतन प्रस्तुत करते हुए कहा कि नए विधान में शब्द सुसमाचार के दो मुख्य अर्थ हैं। यह हमें चारों सुसमाचारों मत्ती मार्कुस लुकस और योहन की ओर इंगित कराता है और इस परिभाषा के अनुसार सुसमाचार का अर्थ हमारे लिए शुभ संदेश है जिसे यीशु ने पृथ्वी पर जीवन व्यतीत करते हुए घोषित किया। पास्का के उपरांत सुसमाचार शब्द को हम एक नए अर्थ में पाते हैं जो यीशु को शुभ संदेश के रूप में प्रस्तुत करता है, अर्थात जहां हम यीशु के पास्का रहस्य उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान को घोषित करते हैं। प्रेरित संत पौलुस इसे सुसमाचार कहते हैं जब वे लिखते हैं, मुझे सुसमाचार से लज्जा नहीं, यह हर एक के लिए मुक्ति की शक्ति है जो इसमें विश्वास करते हैं। यीशु का उपदेश और उसके उपरांत प्रेरितों की घोषणा दोनों में हम नैतिक कार्यों को पाते हैं जो सुसमाचार से आता है, जिसकी शुरुआत हम 10 आज्ञाओं से होते हुए प्रेम की नई आज्ञा में पाते हैं। लेकिन यदि हम प्रेरित पौलुस द्वारा की गई गलती को पुनः दोहराना नहीं चाहते जो नियम को कृपा से पहले और विश्वास को कार्य से पहले रखते हैं, तो यह हमारे लिए आवश्यक है कि मसीह ने हमारे लिए जो कुछ किया है उसकी घोषणा को नए सिरे से शुरू करें। अतः संत पापा कहते हैं कि प्रेरितिक पत्र एवेंजेली गौडियम में मैंने इन दो बातों पर अधिक जोर दिया है, मुख्यतः किरिग्मा या घोषणा जिसमें सारी तरह की नैतिकता निर्भर करती है। वास्तव में धर्म शिक्षा में हम किरिग्मा अर्थात प्रथम उद्घोषणा की महत्वपूर्णता को पाते हैं जो कलिसिया के कार्य का केंद्र बिंदु और विभिन्न रूपों में कलिसिया में नवीनता का प्रयास है। प्रथम उद्घोषणा प्रथम कही जाती है इसलिए नहीं क्योंकि यह सबसे पहले हुई और इसका अंत हो गया या किसी दूसरी महत्वपूर्ण चीज ने उसका स्थान ले लिया। यह गुणात्मक अर्थ में पहला है क्योंकि वह मुख्य घोषणा थी जिसे हम विभिन्न रूपों में बार बार सुनते हैं, जिसे हम धर्म शिक्षा के रूप में अलग अलग रूपों में विभिन्न स्थानों और समय में दूसरों के लिए प्रस्तुत करते हैं। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि धर्म शिक्षा में हम केरिग्मा को ठोस रूप में व्यक्त करते हैं। सुसमाचार की पहली घोषणा की तुलना में कोई भी चीज अपने में अधिक ठोस, गहरी, अर्थपूर्ण और ज्ञान से भरी नहीं है। अब तक हमने ख्रिस्तीय सुसमाचार प्रचार की विषय वस्तु के बारे में जिक्र किया है। हमें यद्यपि इस बात का ख्याल करने की जरूरत है कि किस माध्यम से हम सुसमाचार की घोषणा करते हैं। संत पापा ने कहा,
Il Vangelo deve essere predicato mediante lo Spirito Santo.
हमें सुसमाचार की घोषणा पवित्र आत्मा के माध्यम से करनी चाहिए। कलीसिया को चाहिए कि वह विशिष्ट रूप में यीशु की उन बातों का अनुसरण करे जिसे उन्होंने अपने जन सामान्य प्रेरिताई कार्य से पहले कहा, प्रभु का आत्मा मुझ में छाया रहता है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं। पवित्र आत्मा से अभिषिक्त सुसमाचार की घोषणा करने का अर्थ विचारों और धर्म सिद्धांतों को जीवन के माध्यम गहरे विश्वास के संग प्रसारित करना है। इसका अर्थ विश्वास के साथ ज्ञान की बातों को घोषित करना नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा की शक्ति से अपने कार्यों को करना है, जैसे कि संत पौलुस लिखते हैं। संत पापा ने कहा कि यह कहने में सहज है, लेकिन हम कैसे इसे अपने दैनिक जीवन में अभ्यास कर सकते हैं? यद्यपि यह हमारे ऊपर निर्भर नहीं करता, बल्कि पवित्र आत्मा के उतरने पर होता है। वास्तव में एक चीज है, बल्कि दो चीजें जो हम सबों पर निर्भर करती हैं। संत पापा ने संक्षेप में उनका जिक्र करते हुए कहा,
La prima cosa è la preghiera.
पहला है प्रार्थना। पवित्र आत्मा उन पर उतरते हैं जो प्रार्थना करते हैं, क्योंकि स्वर्गीय पिता जैसे कि लिखा है, मांगने वालों को पवित्र आत्मा प्रदान करते हैं। धिक्कार उन्हें जो बिना प्रार्थना किए सुसमाचार का प्रचार करते हैं। उनके बारे में चर्चा करते हुए संत पौलुस कहते हैं, वे खनखनाते घड़ियाल या एक झनझनाती झांझ मात्र हैं। अतः पहली बात जो हमारे ऊपर निर्भर करती है वह है प्रार्थना, जिससे पवित्र आत्मा आ सके। वहीं दूसरी बात, संत पापा ने कहा कि हम अपने बारे में प्रचार ना करें, बल्कि यह यीशु ख्रिस्त के बारे में हो। उन्होंने पुनः प्रवचन देने वालों को इस बात के लिए सचेत कराते हुए कहा,
La seconda cosa è non volere predicare noi stessi, ma predicare Gesù Signore.
कि हम कई बार अपने बारे में बातें करने लगते हैं और हमारे उपदेश लंबे 20 से 30 मिनट के हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि कृपया आप एक विचार के बारे में प्रकाश डालें। 8 मिनट से लंबा उपदेश उबाव हो जाता है। बहुत बार तो उपदेश शुरू होने पर लोग सिगरेट पीने को बाहर निकल जाते हैं और फिर लौट कर आते हैं। यह महत्वपूर्ण बात है कि हमारा उपदेश छोटा और ठोस हो। हम ईश्वर के बारे में कहें, ना कि अपने बारे में। संत पापा ने कहा कि मैं इसके बारे में अधिक चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि सुसमाचार प्रचार करने वाला व्यक्ति इसके बारे में जानता है। इसका अर्थ उपदेश देना अपने बारे में कहना नहीं है। अपने बारे में नहीं कहना हमारे लिए इस बात को भी समाहित करता है कि हम सदैव प्रेरित कार्य की पहल नहीं करते हैं जो हमारी पहचान से जुड़ी हुई है, बल्कि हमें चाहिए कि निवेदन किए जाने पर हम समुदाय के संग स्वेच्छा से सहयोग करें। इस संदर्भ में पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें, हमारे संग चलते हुए हमें शिक्षा दें, जिससे हम वर्तमान समय के नर नारियों के लिए सुसमाचार की घोषणा कर सकें। इतना कहने के बाद संत पापा फ्रांसिस ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और सभों के संग हे पिता हमारी प्रार्थना का पाठ करते हुए सभों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।
Sic ut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in temptationem, sed libera nos a malo.
Dominum vobiscum.
et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in
seculum. Mysterium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने बुधवार 4 दिसंबर को वाटिकन के संत पापा पॉल षष्ठम सभागार में नाजरेत के पवित्र परिवार धर्म समाज की स्थापना की 150वीं वर्षगांठ समारोह की शुरुआत में धर्म बहनों से मुलाकात की और कहा कि यह उनके लिए अपने इतिहास में प्राप्त कई अनुग्रहों के लिए सर्वशक्तिमान ईश्वर को आभार व्यक्त करने का अवसर होगा और प्रत्येक प्रभु की सेवा में आध्यात्मिक रूप से नवीनीकृत कर पाएंगे। नाजरेत के पवित्र परिवार के धर्म बहनों के धर्म समाज की स्थापना 1875 में हुई और उनकी वेबसाइट के अनुसार वे 14 देशों में 140 समुदायों में सेवा करती हैं। संत पापा ने उल्लेख किया कि धर्म समाज के 150वीं वर्षगांठ का समारोह आगमन के साथ शुरू होता है। आगमन का मौसम प्रभु के वादों में अपने धैर्य और आशा से भरी उम्मीद के साथ हमें ईश्वर की भविष्यवाणी में अधिक भरोसा विकसित करने में सक्षम बनाता है। इस आगमन काल में उनका समारोह सभी धर्म बहनों और उनके सहयोगियों को ईश्वर के देहधारी पुत्र विशेष रूप से धन्य संस्कार और उनके द्वारा सेवा किए जाने वाले लोगों में चिंतनशील विश्वास में बढ़ने में मदद करेगा। संत पापा ने कहा कि सभी जयंती वर्ष चिंतन, स्मरण और पवित्र आत्मा आज हम में क्या कह रही है, इसे सुनने का अवसर है। उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु के प्रति खुले दिलों और हमारे उद्धार के द्वारा प्रभु येसु के साथ वास्तविक व्यक्तिगत मुलाकात के माध्यम से आपका समुदाय हमेशा दहलीज बने, जिसके माध्यम से वे परिवार जो आपके करिश्मे के केंद्र में हैं, हमारे उद्धारकर्ता मसीह में शरण, आशा और शांति पा सकें। संत पापा ने कहा, आपकी प्रार्थना और उदारता के व्यवहारिक कार्य हमेशा येसु के प्रेम को दर्शाते हैं, ताकि आप किसी भी तरह की कठिनाइयों का सामना कर रहे लोगों के लिए आशा का संकेत बन सकें। युद्ध एक मानवीय हार है। युद्ध समस्याओं का समाधान नहीं करता। युद्ध बुरा है। युद्ध विनाश करता है। पूर्वी यूरोप, मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका के लोगों और राष्ट्रों को पीड़ित करने वाले संघर्षों की भयावहता के खिलाफ लगभग एक अग्नि परीक्षा, जिसे संत पापा फ्रांसिस ने संत पेत्रुस महागिरजा घर के प्रांगण में मंच से सुनाया। आज 4 दिसंबर को आम दर्शन समारोह के अंत में संत पापा ने विभिन्न भाषाओं में अपना अभिवादन समाप्त करते हुए लिखित कागज से अपनी निगाहें हटाकर विश्वासियों की भीड़ को देखा और सभी से इस अवसर पर सामूहिक प्रार्थना में शामिल होने के लिए कहा। दुनिया हिंसा से प्रभावित है, जो घटने की बजाय बढ़ती जा रही है। कृपया शांति के लिए प्रार्थना करना जारी रखें। संत पापा रविवारीय देवदूत प्रार्थना और बुधवारीय आम दर्शन समारोह में पीड़ित क्षेत्रों की सूची बनाते हैं, जिसकी शुरुआत यूक्रेन से होती है, फिर फिलिस्तीन, इसराइल, म्यांमार से होती है। हमारी संवेदनाएं पीड़ितों के साथ हैं, बच्चों के साथ। इतने सारे निर्दोष लोग मारे गए हैं। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि वह हमें शांति प्रदान करें। हम हमेशा शांति के लिए प्रार्थना करें। संत पापा ने पोलिश विश्वासियों को अपने अभिवादन के दौरान यूक्रेन के लिए एक विचार व्यक्त किया, जिसके दौरान उन्होंने अगले रविवार 8 दिसंबर को पूर्वी कलीसिया के लिए प्रार्थना और सामग्री सहायता के 25वें दिवस के उत्सव को याद किया। यह पोलिश धर्माध्यक्षों की पहल है, जो 24 वर्षों से सक्रिय है और निकायों, पल्लियों, धर्मसंघों, समुदायों या व्यक्तिगत दाताओं के सहयोग से पोलैंड में रहने वाले युद्ध शरणार्थियों और युद्ध के प्रभाव से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का समर्थन करने के लिए कई मानवीय सहायता भेजता है। संत पापा ने कहा, मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं जो उन क्षेत्रों में प्रार्थनाओं और भेंटों के जरिए कलीसिया का समर्थन करते हैं, खासकर युद्ध से पीड़ित यूक्रेन में। इसके बाद संत पापा फ्रांसिस ने पहली बार चीनी भाषा में बुधवार के धर्म शिक्षा के सारांश के पाठ की शुरुआत के अवसर पर चीनी लोगों को एक विशेष आशीर्वाद भी दिया। संत पापा ने कहा, मैं यहाँ मौजूद चीनियों और मीडिया के माध्यम से जुड़े लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मैं आप सभी को और आपके परिवारों के लिए खुशी और शांति का आह्वान करता हूँ। ईश्वर आपको आशीर्वाद दें। और संत पापा फ्रांसिस की मौजूदगी में 2 और 3 दिसंबर को कासा सांता मार्ता में आयोजित कार्डिनलों की परिषद C9 के दिसंबर सत्र में कलीसिया और दुनिया से जुड़े कई मौजूदा मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में कार्डिनलों द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले विभिन्न देशों की स्थिति पर विचार करने, संघर्ष और संकट की चल रही वास्तविकता के बारे में चिंताओं और आशाओं को साझा किया गया। कलीसिया में सहकारिता, महिलाओं की भूमिका, हालिया धर्मसभा, धर्म प्रांतीय कुरिया में प्रेरितिक संविधान प्रेडिकाते एवांजेलुम का क्रियान्वयन, प्रेरितिक राजदूतों की भूमिका, संकटों और संघर्षों के बीच वैश्विक वास्तविकता पर चिंताएं और आशाएं आदि विषय कार्डिनल परिषद के दिसंबर सत्र के दौरान संबोधित किए गए। कार्डिनलों की परिषद का अगला सत्र अप्रैल 2025 के लिए निर्धारित है। उधर संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रधान याचक कार्डिनल माउरो गंबेत्ती ने पवित्र द्वार की अखंडता को सत्यापित करने के लिए मान्यता समारोह का नेतृत्व किया, जिसे 2016 में दया की असाधारण जयंती के अंत में सील कर दिया गया था। संत पेत्रुस महागिरजाघर में एक समारोही प्रार्थना के बाद हथौड़े और छेनी से दीवार को तोड़कर चाबी वाला बक्सा निकाला गया, जिससे 24 दिसंबर की शाम को संत पापा फ्रांसिस पवित्र द्वार खोलेंगे और जयंती का उद्घाटन करेंगे। संत पेत्रुस महागिरजाघर के रखरखाव कर्मचारियों ने बसिलिका के अंदर से पवित्र द्वार को सील करने वाली दीवार को हटा दिया और 20 नवंबर 2016 को, जिस दिन दया की जयंती समाप्त हुई थी, वहां लगे धातु के बक्से को हटा दिया। बॉक्स के अंदर पवित्र द्वार की चाबी, उसके हैंडल, उसके बंद होने का दस्तावेजीकरण करने वाला जर्म पत्र, 4 सुनहरी ईंटें और कई पदक थे। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।